مطالعہ کر رہے ہیں اس سورہ توبہ کا، آج کی آیات جو ہیں یہ بھی اس تیسرے خطبے کا حصہ ہیں. پہلے دو خطبات جو ہیں وہ ان کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور تیسرے خطبے میں جو آیات ہیں یہ جنگ تبوک سے واپسی پر متفرق احکامات اس کے اندر نازل ہوئے ہیں، اور منافقین کو تنبیہات اور ان سے متعلق متعدد احکامات اس کے اندر آئے ہیں، اور سچے مومنین کے حوال اور ان کی توبہ کے حوالے سے اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے. آج کی جو آیات ہیں ان کے اندر یہ جو آخری حصہ جس کے اندر سچے مومنین کے احوال اور ان کی توبہ کا ذکر ہے، اس حوالے سے یہ آیات ہیں. ان کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن شان نزول کے حوالے سے تھوڑا سا ان کو ہم پیش نظر رکھ لیتے ہیں کہ یہ غزوہ تبوک جو ہے آپ جیسے جانتے ہیں کہ یہ بڑے سخت موسم کے اندر پیش آیا تھا، بڑا سخت گرمی کا موسم تھا، کھجوریں جو ہیں وہ بھی بالکل تیار تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دنوں سے اس کے حوالے سے خطبات بھی دے رہے تھے کہ یہ مارکہ جو ہے یہ ہمیں درپیش ہے، اور اس کے لیے تمام حضرات جو ہیں وہ تیاری کر کے رکھیں. اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش تھی کہ لوگ مکمل طور پر اس کی تیاری کریں، اور اچھے طریقے سے جس کے بس میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب لا کے اس غزوہ کے اندر پیش کر دیں. اور اس کے حوالے سے جب انفاق کی آیت آئے گی تو وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ان آیات کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے لقد تاب اللہ سے، کہ اللہ تعالی نے لقد بے شک تاب اللہ متوجہ ہوا اللہ، یعنی توبہ قبول کی. تاب یتوب یہ ایکچولی ہے کہ رجوع کرنا، اور جب ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالی نے رجوع کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا نظر کرم لوگوں پر کیا ہے توبہ قبول کرنے سے حوالے سے، یا اگر اس کو لفظی معنوں میں لیا جائے تو توبہ قبول کی اس کا مطلب ہوگا. تو بے شک تاب اللہ متوجہ ہوا اللہ توبہ قبول کی، علی النبی نبی پر، والمہاجرین والانصار اور مہاجرین اور انصار پر، الذین جنہوں نے، اتبعوہ پیروی کی ان کی، اتبعوا پیروی کی ان سب نے، جمع کا صیغہ ہے، اور ہو جو ہے اس کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. فی میں کے لیے استعمال ہوتا ہے، سا گھڑی کے لیے یوز ہوتا ہے، اور اسرا جو ہے یہ آسانی کے لیے استعمال، مشکل کے لیے، اور اس کا اپوزٹ جو ہے وہ یسرن ہے، جیسا کہ ہم ان مع العسر یسرا جو ہے اس کے اندر پڑھتے ہیں. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اور یہاں پہ عسرا استعمال ہوا ہے، مشکل کی گھڑی. اس کے بعد من بعد، اس کے بعد، ما کادا کہ جو قریب تھا، کادا یا کادو قریب ہونے سے ہے، اور معاون فعل اس کے ساتھ دوسرا فعل آتا ہے، مطلب کس کے قریب، تو جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کام ہونے کے قریب تھا، جس کام کا اس کے آگے ذکر ہوگا اس کے لیے یہ ہوگا. یہ آپ نے پڑھا ہوگا، یہ سورہ بقرہ کے اندر بھی آتا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کے لیے کہا تھا، تو وہاں بھی یہ الفاظ آتے ہیں کہ وما کادو یا فالون، مطلب یہ ہے کہ وہ کرنے والے تھے اس کو، لیکن جس طریقے سے انہوں نے کیا تھا اس میں پرسنٹیج بہت کم تھی. تو ایک تو یہ کادا یا یکادو جو ہے یہ ہے، دوسرا اسی سے ملتا جلتا لفظ آپ نے لعلہ کا قرآن میں دیکھا ہوگا، لعلہ کم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. इसी तरह इससे मिलता जुलता फ्यूचर के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है आशा, आशा अंतकर। हो सकता है कि तुम अंतकरहु शैअन, कि तुम जिस चीज से कराहत करते हो, तो मतलब ये अनकरीब होने वाले काम के हवाले से ये तीनों अल्फाज आते हैं। तो यहाँ हमारे एक मरहूम मकफूर आलम दीन आए थे मौलाना खलील हामदी साहब, तो उन्होंने ये बात हमारे सामने इन तीनों अल्फाज के हवाले से रखी थी। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे यकादो आता है उसमें होने की परसेंटेज कम होती है, उससे ज्यादा लाल्ला जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसके अंदर होती है, और जहाँ पे तकरीबन यकीनी तौर पर कोई चीज होने वाली होती है उसके लिए आशा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यज़ीगु, ये टेढ़ के हवाले से होता है, यज़ीगु कुलूबु मतलब दिलों के अंदर टेढ़ पैदा हो जाना। ये अल्फाज आपको सूरा आले इमरान के शुरू में भी मिलेंगे कि जिनके दिलों में टेढ़ होती है वो इसको अपनी मर्जी के मानी पहनाने की कोशिश करते हैं। फरीकुम मिनहुम, फरीक जैसा कि आप जानते हैं सेक्शन के लिए यूज होता है, और मिनहुम उनमें से, सुम्मा ताबा फिर मतवज्जे हुआ, अलैहिम उन पर फिर उनसे तवज्जो फरमाई, या फिर उसने तवज्जो फरमाई उन पर, इन्नहु बिहिम बेशक वो उन पर रऊफुर रहीम इंतहा शफकत करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। ये आयत है, इसका तर्जमा पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने नबी के हाल पर रहमत से तवज्जो फरमाई, और मुहाजरीन और अंसार के हाल पर भी जिन्होंने ऐसी तंगी के वक्त में नबी का साथ दिया, बाद इसके कि उनमें से बाद के दिल फिर जाने के करीब थे, अपनी रहमत से उन पर तवज्जो फरमाई, बेशक वो उन पर शफकत करने वाला मेहरबान है। आप देखें कि यहां अगर इसका तर्जुमा देखा जाए कि बेशक अल्लाह ताला ने तवज्जो फरमाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम फरमाया, अल्लाह ताला का ये बड़ा ही जबरदस्त किस्म का तरीकाकार है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लाह ताला फरमाता है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो वहां अल्लाह ताला पहले ये बात हमारे सामने रखता है कि जैसा कि सूरा, इसी सूरा के अंदर आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफल्लाहु अंक, माफ किया अल्लाह ने आपको, लेमा अजिन तला हम, आपने इनको इजाजत क्यों दी। तो ये गजवाए तबूक का जो मामला था, जैसा कि मैंने अर्ज किया, ये बड़ा मुश्किल वक्त था। इसको अल्लाह ताला ने जब खुद कहा कि साथ उसरा, ये मुश्किल की घड़ी थी, तो ये इसका सही मतलब है कि ये मुश्किल का टाइम था उस वक्त। तो ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लोग आते थे और आके अपने उजर पेश करते थे कि मेरी ये मजबूरी है, मैं आप नहीं जा सकता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है कि उजर को कबूल करने वाले थे, जिस तरह लोग उजर पेश करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कबूल करते जाते थे और लोगों को इजाजत दे देते थे। जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको चाहिए था कि लोगों को जो है वो इजाजत ना आप देते, ताकि आपके सामने जरा बात क्लियर हो जाती कि कौन सच्चा है और कौन अपने वादे में झूठा है। तो उसमें भी अल्लाह ताला ने आगाज जो किया, फरमाया कि अफल्लाहु अंक, अल्लाह ताला आपको माफ करे। यहाँ पे भी यही फरमाया गया, लकद ताब अल्लाहु अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला ने आप पर नजरे अनायत की है, आप पर रहमत की तवज्जो की है, और मुहाजरीन पर और अंसार पर जिन्होंने इत्तबाऊ फी साअतिल उसरा, के जिन्होंने मुश्किल घड़ी के अंदर आपका साथ दिया है। और फिर हुआ ऐसे था, असल में तकरीबन 80 के करीब जो मुनाफिकीन थे वो पीछे रह गए थे, और उसके अंदर सच्चे मुसलमान जो हैं वो भी सुस्ती का शिकार हो गए थे, जिनका जिक्र इन आयात के अंदर जो है वो आएगा। हकीकत ये है कि अगर ये सुस्ती सहाबा के साथ उस वक्त ना होती तो आज रहती दुनिया तक जो सुस्ती हम कमजोरों के अंदर पाई जाती है उसका भी कोई हल हमारे सामने ना होता। आज वो उस जमाने में भूले थे तो आज ये सारी रहनुमाई अल्लाह ताला ने कयामत तक रहने वाले मुसलमानों के लिए हमारे सामने रख दी है। तो इस हवाले से जी 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 हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर देखा जाए ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि या अय्युहन्नास तूबू इलल्लाह फइन्नी अतूबू फिल यौमि मिअत मर्रा, कि ऐ लोगो अल्लाह ताला से तौबा और इस्तगफार करो और मुझे देखो कि मैं एक दिन में 100 बार अल्लाह ताला से तौबा करता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हकीकत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बराहे रास्त निगरानी के अंदर मुआशरे के अंदर रह रहे थे, तो अल्लाह ताला ने क्योंकि उनको नमूना बनाना था इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी जरा जरा बात को नोट करके कुरान में लिख दिया। हत्ता कि आप देखें कि सूरह तहरीम के अंदर अल्लाह ताला बकायदा सीधा डायरेक्ट कहते हैं कि लिमा तो हर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, शहद के हवाले से जो बात आई थी, हालांकि आपने सिर्फ उससे रुके थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज से रुक जाते तो आज पूरी इंसानियत जो है पूरे मुसलमान जो है वो उस चीज से रुक जाते, लेकिन आपको नमूना थे पूरी पूरी इस उम्मत के लिए, इसलिए आपकी छोटी छोटी चीजों को भी अल्लाह ताला ने निशानदेही करके तो हमारी इसलाह की है इस हवाले से। असल में बताना हमें मकसूद है इन सारी चीजों के साथ। जज़ाकअल्लाह खैर, बात इस हवाले से सामने आ गई है। तो अब जी इसको थोड़ा सा हम और करते हैं, तौबा के मानी डॉक्टर साहब ने लिखे हैं इसमें कि अल्लाह की तरफ रुजू करना, लेकिन जब इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हो और अल्लाह के साथ सिला साथ आए तो इसका मानी होता है रहमत की नजर करना या रहमत से मतवज्जो फरमाना, तवज्जो फरमाना। इसका मुरादी मानी तौबा कबूल करना है। साहतल उसरा के मानी जो है वो मुश्किल घड़ी, इससे मुराद गजवा तबूक है। इस गजवा को मुश्किल घड़ी से इसलिए ताबीर किया गया है कि जब ये गजवा पेश आया तो सख्त गर्मी का मौसम था, सफर बड़ा तवील और कठिन था, सवारियों की इंतहाई कमी थी, राशन की भी कमी थी, मदीने की फसलें पकी खड़ी थी, खजूर की फसल के उतरने का वक़्त था, ताखीर से फसल के जाया हो जाने का अंदेशा और कहत का अंदेशा था, इसलिए इस मुहिम को जेशल उसरा के नाम से याद किया जाता है। जो लोग इन हालात और इस आजमाइश में साबित कदम रहे, ये आयत उन लोगों के लिए रहमत और शफकत का एक ऐलान आम है। ऐसे मुश्किल वक्त में जबकि बाद मोमिनीन के कुलूब भी मुश्किलात और सौबतों का हुजूम देखकर डगमगाने लगे थे और करीब था कि रफाकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे हट जाएं, हक ताला ने दोबारा मेहरबानी और दस्तगीरी फरमाई कि उनको इस किस्म के खतरात और बसावत पर अमल करने से महफूज रखा और मोमिनीन की हिम्मतों को मजबूत और इरादों को बुलंद किया। इन लोगों में अबू खुसैमा भी शामिल हैं। इनफरादी तौर पर उनकी जो शिरकत थी उसका जिक्र किया गया है। हजरत अबू जर अपना ऊंट लागर और बीमार होने की वजह से लश्कर से पीछे रह गए। ऊंट के ठीक होने का इंतजार करते रहे, जब ठीक ना हुआ तो सामान अपनी कमर पर लाद कर लश्कर को पकड़ने के लिए पैदल चल पड़े। اور ایک مقام پر لشکر کو جا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو ذر کے لیے دعائے خیر و رحمت اس حوالے سے آپ دیکھیں کتنی قربانی ہے کہ ایک سامان جو ہے وہ اپنی سواری پہ ہے اور سواری بیمار ہے تو اس کو اپنے دندوں پہ اٹھا کر لشکر کے ساتھ جو ہے وہ چل لیتے ہیں. تو اس طرح کی بڑی ایسی دل کو ہلا دینے والی مثالیں صحابہ کے جوش اور جذبے کی ملتی ہیں اس غزوہ کے حوالے سے کہ ان کی مثال جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں وعلی الثلاثہ اور توبہ قبول کی ان تین کی الذین خلفوا جن کو پیچھے کیا گیا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے بلکہ ان کے معاملے کو مؤخر کیا گیا, مطلب یہ کہ ان کا معاملہ ان سات لوگوں سے مؤخر کیا گیا. تو اصل حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیاری کا حکم دیا تو اس میں تین صحابہ تھے, حضرت کعب بن مالک تھے ایک, اور دوسرے ہلال بن امیہ تھے, اور تیسرے مرارہ بن ربیع. تین صحابی تھے اور یہ بڑے ہی سچے اور نیک قسم کے اور ہر معاملے میں آگے بڑھنے والے لوگ تھے. تو جب کافی بڑھاپے کا زمانہ ہوا تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جو ہے وہ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ ان کو وہ نظر جب کمزور ہوئی تو وہ ان کو مسجد میں لے جایا کرتے تھے, واپس لے آیا کرتے تھے. تو وہ ان کو اپنا واقعہ سناتے ہیں جو حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. تو واقعہ جو ہے وہ کافی طویل ہے, اس کو میں تھوڑا مختصر حوالے سے جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تو ہم میں حالانکہ میرے پاس مال بھی تھا, سب کچھ تھا, اور میں روز نکلتا کہ اپنے جو ہے نا کوئی چیزیں خرید کے لاتا ہوں اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے جو ہے وہ تیاری کرتا ہوں, لیکن وہ سستی کاہلی کی وجہ سے واپس خالی ہاتھ لوٹ آتے. پھر اگلے دن ارادہ کرتے کہ میں جو ہے نا پھر کل اس کا آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں کہ پروگرام قریب ہوتا گیا. اور ایک دن جو آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو چلتے ہیں. تو پروگرام کے مطابق جب روانہ ہونے کا وقت آیا تو اس وقت آپ کی تیاری نہیں تھی, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ, میں جو ہے نا جلدی جلدی تیاری کرتا ہوں, لشکر نکل جائے گا, میں تو جوان آدمی ہوں اور جا پہنچوں گا جلدی قریب. وہ کہتے ہیں تیاری کرتے کرتے مجھے اتنا ٹائم ہو گیا کہ لشکر جو ہے وہ کافی آگے نکل گیا, اور میں نے دیکھا کہ کچھ اور بھی لوگ ہیں جو یہاں پہ رکے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا, بعد میں تیز سواری لے لوں گا, لیکن وہ جا نہیں سکے. اور ان کے ساتھ تین دوسرے جو صحابہ جن کا میں نے ذکر کیا تو وہ بھی نہیں تھے. کہتے ہیں کہ میں جب جاتا بازار میں تو وہاں پہ مجھے معذور قسم کے لوگ دیکھنے کو ملتے, جن کے اندر میں جب اپنے آپ کو دیکھتا تو بڑا بہت پشیمان ہوتا میں کہ میں کیوں پیچھے رہ گیا ہوں. ان کا دل ان کو ملامت کرتا رہتا بار بار, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ لشکر بہت دور نکل چکا تھا تو وہ اس حوالے سے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ کا معمول تھا آپ مسجد نبوی کے اندر دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر بیٹھ جاتے تھے. تو اسی طرح ہوا کہ آپ بیٹھ گئے لوگ, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ رہ گئے تھے اس کے اندر 80 سے زیادہ تو منافقین تھے, اور ان میں تین صحابہ یہ بھی تھے. لوگ باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اپنے عذر کو بیان کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ کا یہ عذر ہے تو کوئی بات نہیں. ایسے ہی وہ منافقین جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ کہتے کہ تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, اللہ تمہاری مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اسی طرح آپ ان کو فارغ کرتے رہے. حضرت کعب بن مالک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو کہتے ہیں کہ میں نے میرے دل میں ایک تو خیال آیا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذر قبول کرتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو بھیج رہے ہیں, جب میں سچ بولوں گا تو معاملہ جو ہے وہ ایسے ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں گے کہ یہ اچھے خاصے صحت مند قسم کے صحابی تھے اور یہ پیچھے رہ گئے ہیں. तो कहते हैं कि अगर मेरे दिल में जरा सी भी ये बात होती ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं चलेगा, तो मैं उनकी तरह मैं भी बयान कर देता, लेकिन क्योंकि मुझे मालूम था कि आप अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं, आज मैंने अगर झूठ बोल दिया तो कल को अल्लाह ताला ने ये सारी सूरत हाल जो है वो आप पर वाजे कर दी, तो फिर अल्लाह भी नाराज और अल्लाह का रसूल भी नाराज। तो बेहतर ये है कि मैं अल्लाह ताला को राजी करता हूँ, आज अल्लाह के रसूल अगर मेरी बात से नाराज हो जाएंगे तो अल्लाह ताला मेरे लिए कोई सबब जो है वो अच्छे तौबा सफार का कोई निकाल देंगे। तो ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने ये बात बयान की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, तुम्हारा मामला अल्लाह ताला के साथ है और वही तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकाले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों सहाबा से तमाम मदीना के लोगों को कहा कि आप इनके साथ कलाम बात करना, राबता रखना, लेन देन कोई चीज भी बंद रखें आप। तो सब ने मुकाता कर दिया। 40 रोज गुजर गए, कोई आपसे कहते हैं कि बाकी दो जो थे वो तो इतने ज्यादा उन्होंने महसूस किया कि वो घर बैठ गया और मैं तो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए बाकायदगी से आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखता रहता और आपको सलाम करता और आपके होंठों की तरफ जो है वो मैं देखता कि शायद मुझे सलाम का जवाब दें, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपके सलाम का जवाब नहीं देते थे। तो इस तरह का मामला जब हुआ, आगे की आयत में पूरा नक्शा इस बात का खींचा गया है कि किस तरह जमीन अपनी वुसअत के बावजूद उन पर तंग हो गई, अपने आप को उन्होंने अपनी जानों को जो है वो बिल्कुल जो है वो ये एहसास कर लिया कि ये हलाकत है, बिल्कुल खत्म। मतलब कहते हैं कि मैं इस दौरान अपने चचाजाद भाई अबू कुतादा के घर में गया, दीवार से चढ़ के मैंने उनके साथ 3 बार उन्हें कहा कि क्या मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं करता हूँ, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने दोबारा फिर यही अल्फाज दोहराए, क्या मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं करता हूँ, फिर वो खामोश रहे। तीसरी बार फिर उन्होंने कसम देकर कहा कि अल्लाह की कसम, क्या मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं करता हूँ, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आपका मामला अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही जानते हैं। कहते हैं कि उस दिन ठीक ठाक वो रोए, वहां पे आंसू लेकर जो है वो वहां से रुखसत हुए। तो और जब 40 दिन गुजरे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा कि इनको इनकी बीवियों से भी इन्हें कहो कि आप अलग रहें, आपका बीवियों के साथ भी ताल्लुक नहीं रहना चाहिए, वो भी आपसे बात नहीं कर सकती। तो वो मतलब यहां तक मुकाता हो गया उनकी गुफ्तगू का। और फिर कहते हैं कि एक दिन मैं बैठा था और मैं क्या देखता हूं कि एक सहाबी दूर से आवाज लगाते हैं कि मुबारक हो काब बिन मालिक, मुबारक हो। कहते हैं कि मैं सजदे में गिरा और उसी वक्त मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि लाजमन अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए कोई बेहतरी, कोई सबब बना होगा, मेरे लिए कोई मगफरत का जरिया हुआ होगा। तो कहते हैं कि मैं देखता हूं कि वो मदीने के सारे लोग फौज की तरह जो है वो मेरी तरफ लपकते हैं और मुझे अपने गले लगाते हैं। और फिर मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश होता हूं और जाके पूछता हूं कि अल्लाह के रसूल, क्या ये आपकी तरफ से माफी है या अल्लाह की तरफ से? तो आप फरमाते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए माफी है। तो ये 3 वो सहाबा हैं जिनका जिक्र सलासा के साथ जो है वो पेश किया गया है कि ये 3 वो हैं जिनकी अल्लाह ताला ने तौबा जो है वो कबूल की। आप देखें कि अगर ये सिर्फ सच्चाई है, सच बोलना है कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने ये रास्ता जो है वो उनके लिए निकाला, कि दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी अल्लाह ताला ने उनकी निजात का जो है वो जरिया बनाया। तो ये जी जी बिल्कुल दूसरों से मदद मांगते हैं, सही बुनियादी नुकता जी उनका अल्लाह ताला की तरफ, जी अल्लाह की तरफ उनका ये था। तो इसमें भी ये फरमाया गया है कि वह अला सलासा थे, और इन 3 पर भी अल्लज़ीना खुल्लिफू, जिनका मामला जो है वो पीछे रखा गया था हत्ता यहाँ तक के इदा जब बाकत तंग हो गई अलैहिमुल अर्दु उन पर जमीन बिमा रहबत इसके साथ जो कुशादा थी। रहबत कुशादगी के लिए इस्तेमाल होता है कि जमीन तो कुशादा थी लेकिन उनके लिए वो जमीन तंग हो गई। वह बाकत और तंग हो गई अलैहिम अनफुसहुम उन पर उनकी जाने वगन्नू और उन्होंने ख्याल कर लिया अन के ला मलजा मिन अल्लाह नहीं है कोई पनाहगाह अल्लाह से बचने की इल्ला इलैही मगर उसी की तरफ अल्लाह ताला की तरफ। मतलब ये है कि बाद जो उलमा हैं वो इस हवाले से भी बयान फरमाते हैं कि जैसे एक बच्चा है उसको उसकी माँ जो है वो सजा देती है और वो ये समझता है कि मुझे सजा देने वाली भी यही है लेकिन मेरे लिए पनाह भी इसी के पास है, तो फिर अपनी माँ को ही जो है वो बार बार पकड़ता है और अल्लाह जो है वो तो 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो उस हवाले से यहाँ बड़ा जबरदस्त किस्म का नुक्ता है कि उन्होंने पनाह जो है उन्होंने कहा कि अल्लाह के सिवा पनाह भी कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह की तरफ ही है। ले यतूबू ताकि वो तौबा करें इन्नल्लाह के बेशक अल्लाह ताला हुआ वही अत्तवाब रहीम बार बार तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम फरमाने वाला है। ये उसी के हवाले से इसका तर्जुमा है और उन तीनों को भी उसने माफ किया जिनके मामले को मुलतवी कर दिया गया था जब जमीन अपनी सारी वसत के बावजूद उन पर तंग हो गई और उनकी अपनी जाने भी इन पर बार होने लगी और उन्होंने जान लिया कि अल्लाह से बचने के लिए कोई जाए पनाह खुद अल्लाह ही के दामन रहमत के सिवा नहीं है। तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से उनकी तरफ पलटा ताकि वो उसकी तरफ पलट आए, यकीनन वो बड़ा माफ करने वाला और रहीम है। आप देखें कि सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू, आप देखें कि मौलाना ने तफहीम के अंदर लिखा है कि इनकी बिल्कुल हालत ऐसी थी कि जैसे उसके दरवाजे पर बैठे इल्तिजाएं कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने खुद उनको जाकर उठा के अपने पास लाया और उनको पनाह दी। तो ये उस हवाले से इन तीनों असहाब की तौबा के हवाले से ये आयात जो हैं ये बयान फरमाई गई हैं। ये इसका इंग्लिश तर्जुमा है। ये तीसरे ग्रोह जो लोग पीछे रह गए थे उनके हवाले से इकबाल भाई ने ये पॉइंट बना के हमारे सामने रखे हैं कि ये तीन नौजवान काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबी, हिलाल बिन उमैया थे। इनका मामला इन सात असहाब से मुख्तलिफ है जिनका जिक्र पहले गुजर चुका है। सफर पर ना निकलने की वजह से उनसे भी कुताही हुई लेकिन उन्होंने साफ साफ अपने कसूर का इतराफ कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों के मामले में फैसले को मुलतवी कर दिया और आम मुसलमानों को हुक्म दे दिया कि जब तक खुदा का हुक्म ना आए इनसे किसी किस्म का मुआशरती ताल्लुक ना रखा जाए। इसी मामले का फैसला करने के लिए ये आयत नाजिल हुई। 50 रोज के मुआशरती मुकातया के बाद अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और उनके लविशों से मुआफ फरमा दिया। जी उन जी 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 सही सही। इसकी असल में एक तो मेन वजह ये है कि इस्लामी मुआशरा जो अल्लाह ताला तरतीब देता है उसके अंदर इससे ये बात सामने आती है कि बंदा चाहे कितना ही नेक क्यों ना हो, लेकिन जब कुफर और इस्लाम का एक जो है वो मुकाबला आपस में होता है, तो उसके अंदर सुस्ती दिखाने वाला जो है उसके साथ बड़ी सख्ती बरती जाती है। और मुआशरा ऐसे तरतीब दिया गया था कि जो बिल्कुल सच की बुनियाद के ऊपर था कि एक बंदे से गलती होती है, ये तो जंग में ना जाने की गलती थी और उससे सुस्ती की बुनियाद के ऊपर थी, एक औरत जो है उसके ऊपर वो बहुत बड़ा गुनाह कर बैठती है जबकि वो अपने आप को छुपा सकती थी, अपने आप को जाहिर करना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन क्योंकि उसके पेशे नजर आखरत थी और उसके पेशे नजर ये था कि अबदी किस्म की फलाह जो है वो मुझे नसीब हो, तो अल्लाह के रसूल के सामने आगे खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझसे ये गलती सरजद हो गई है। आप सल्लम मुंह को दूसरी तरफ करते हैं, वो उस तरफ आगे खड़ी हो जाती है और फिर अपने जुर्म का इतराफ करती है। तो आखिर ये क्या चीज थी कि जो उसको सच पर और उसको दुनिया के अंदर सजा को तरजीह दे रही है? वो सिर्फ आखिरत पर ईमान है कि कल को मुझे अल्लाह के सामने पेश होना है और मुझे कम अज कम उस गुनाह से तो छुटकारा मिल जाएगा। एक शख्स जो है उसे चोरी सरजद हो जाती है और उसका हाथ जब काटा जाता है तो हाथ को उठाकर चूम लेता है कि आज इस हाथ की वजह से मैं आखिरत के अजाब से बच गया हूँ। तो ये वो जज्बा था, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि यौमा युनफा उस्सादिकीना सिद्कुहुम, कि क्यामत का दिन वो होगा जिस दिन फायदा देगा उनको उनका सच। तो ये सच्चे लोगों ने इसीलिए दुनिया की तकलीफ को बर्दाश्त कर लिया। हालांकि आप देखें कि जब पूरे मुआशरे ने उनका मुकाता कर दिया था, तो शाह गत्थान जो है जो कुफार का लीडर था, उसने बंदे को भेजा, एक लेटर देकर, एक खत देकर भेजा कि तुम्हारे मुआशरे के लोगों ने तुमसे मुकाता कर दिया और तुम को मामूली आदमी थोड़ी हो, तुम्हारी एक वैल्यू है और हम तुम्हें अपने पास लेते हैं और तुम हमारे पास आ जाओ, तुम्हारी कदर की जाएगी। तो काब बिन मालिक वो सहाबी हैं कि जिनका ताल्लुक तो अल्लाह के रसूल के साथ जुड़ा हुआ था, उन्होंने अपने ताल्लुक को काटा नहीं था और उन्होंने वो खत लेकर चूल्हे के अंदर झोंक दिया कि ये मुझे एक और मुसीबत के अंदर मुबतला करने वाले हैं। तो ये उस हवाले से जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हदीसों की किताबों में मिलता है कि काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने सच तो इस मुश्किल की घड़ी में बोल दिया था, लेकिन मैंने यकीन कर लिया कि जो सच है उसी के अंदर निजात है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अस्सिद्दीकु युंजी, कि जो सच्चाई है वो निजात देती है बंदे। तो इस निजात से मुराद सिर्फ दुनिया की निजात नहीं है, दुनिया और आखिरत की निजात है। माफ नहीं फरमाया था, उजर को कबूल किया था, माफ नहीं फरमाया था। जी 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 बिल्कुल सही। कहाँ पर पहुंचे थे जी हम? हाँ जी, हक व बातल की कश्मकश में शिरकत से पहले उतर ही करना इतना बड़ा जुर्म है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुफर और इस्लाम की आवेजिश में मोमन का असल इम्तिहान होता है। कोई शख्स अपनी जात में कैसा ही इबादत गुजार और मुत्तकी क्यों ना हो, हक व बातल की कश्मकश में अदम शिरकत के बायस रांधाए दरगाह करार पाता है और अगर वो अपनी रवश तब्दील नहीं करता तो उसे इस्लामी काफिला से निकाल बाहर किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अंसार के लिए बहुत वाज़े थी, लेकिन ये अल्लाह की मोहब्बत के ताबे थी। ये तीनों बुजुर्ग अपने मुआशरे के मुअज्जज़ अफराद हैं, लेकिन जैसे ही क़यादत की तरफ से हुक्म आता है कि उनका बायकॉट कर दो, तो मुआशरे का एक एक फर्द उनसे कट कर रह जाता है। मुआशरती नज़्म व ज़ब्त और डिसिप्लिन की एक शानदार मिसाल है। आप देखें कि वो एक मिसाली मुआशरा था, कि लीडर जो है वो मना कर दिया उसने किसी चीज से, तो सारे के सारे सहाबा जो है वो उनके ताबे हो जाते हैं। ये तो सहाबा की तबा की कई सारी मिसालें हैं, जैसा पिछले प्रोग्राम में दरस के हवाले से भी मैंने आपको रात के सामने रखी थी कि सहाबा तो जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पे चलने वाले लोग थे और आप पर अपनी जानों तक कुर्बान कर देने के लिए जो है वो तैयार थे। तो ये और इसके बाद आप देखेंगे जब ये अल्लाह ताला की तरफ से आयतें नाजल होती हैं तो आप देखेंगे वो पूरी की पूरी जमात जो है वो किस तरह उनके ऊपर जो है उनकी तरफ लपकती है, उनको अपने सीने से लगाती है, उनको ये नहीं कहती कि नहीं तुम्हारा तो मामला ये है वो है। जब अल्लाह की तरफ से गारंटी मिल गई तो पूरे दिल को साफ करके उन्होंने उनको अपने गले से लगा लिया और हर एक जो है वो लपक रहा था हजरत काब बिन मालिक और उन तीनों सहाबा की तरफ के जो पीछे रह गए थे और उनकी तौबा का मामला जो है वो अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया। जी हाँ बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही जी बिल्कुल। ये आगे आयत आ रही है इंशाल्लाह जो हक का साथ देने के वाले से, सच का साथ देने के वाले से अगली आयत जो है इसके अंदर ये इनके अंदर एक ही रूह कार फरमा दिखाई देती है और वो है ईमान, यानी अल्लाह पर ईमान और अल्लाह के रसूल पर ईमान, आखरत पर ईमान, और वो सिर्फ अल्लाह को अपना मालिक और हाकम समझते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल और रहनुमा जानते हैं और आखरत में जवाबदेही के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं। अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल की सुन्नत उनके लिए ज़ाबता हयात है, यही वो हकायक हैं जिनसे इनकी जिंदगी इबारत है और उनकी उसी ने इनको दुनियावी और उखरवी कामयाबियों का मुस्तहिक बनाया है। अगली आयत जो है ये है असल में निचोड़ और इसके अंदर हमारे लिए भी रहनुमाई है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह तकवा करो अल्लाह का, वकूनू और हो जाओ माअस सादिकीन सच्चे लोगों के साथ। ये है कि आज हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि असल चीज जो है वो क्या है। असल चीज तो तकवा है कि जो जिसको पैदा करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया कि आप अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचो और ये देखो कि अल्लाह ताला ने आपसे किन चीजों का तकाजा किया है, किन चीजों से आपको मना किया है। आपके अंदर ये जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, अपने सीने पर हाथ रख के फरमाते हैं कि आप तकवा होना, कि तकवा तो यहाँ पर है, तीन बार फरमाया। तो ये एक एहसास लोगों के अंदर पैदा करना कि अल्लाह ताला से डरना, आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से डरने की बात थी कि जिसकी वजह से आपने इन तीनों असहाब ने सच बोला कि कल अल्लाह ताला के सामने हमें पेश होना है, उसके सामने खड़े होने और उसकी के सामने जवाबदेही के एहसास ने उनको ये बता दिया कि ये तो अल्लाह के रसूल हैं और इन पर तो वही नाजिल होती है। आज हर चीज इन पर आया है, आज अगर इनको मामूली तौर पर खुश कर दिया, कल अल्लाह ताला ने अगर सूरत आल को वाजे किया तो हमारा क्या बनेगा। ये है तकवा कि बंदा हर मामले में ये देखे कि मेरा रब हमसे, हमारा रब हमसे क्या तकाजा करता है, क्या जो काम मैं कर रहा हूँ उससे अल्लाह ताला नाराज होगा या अल्लाह ताला राजी होगा। हर मामले में इस चीज को देखना और दिल के अंदर अब इंसान है उससे गलती होती है, सुस्ती भी उससे सरजद होती है, लेकिन तकवा क्या तकाजा करता है कि आपके दिल के अंदर हरकत पैदा हो, आपके दिल के अंदर ये गर्मी पैदा हो, अगर अगर ये एहसास पैदा हो कि आपने गलत काम किया है तो अल्लाह की तरफ आपने रुजू करना है। आगे जो फरमाया इसका ताल्लुक बंदे के बातनी दुरुस्तगी के ऊपर है, कि बंदे के ख्यालात ठीक हों, अल्लाह ताला के साथ उसका ताल्लुक इतना मजबूत है। और आगे फरमाया वकूनू मासादिकीन, वकूनू और हो जाओ मासादिकीन सच्चे लोगों के साथ। आप देखें कि निजात जो है वो सच्चे लोगों की मैयत के साथ है। जो जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यौम यनफाउ सादिकीन सिदकुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, के जो सच्चे लोग हैं उनकी जगह का वो दिन है, उस दिन उनकी कामयाबी है, उसी दिन वो जो है वो सच उनके काम आएगा। तो माहियत जो है मतलब कि उस ग्रोह के साथ होना, किसी भी सच्चे लोगों के का साथ देना, इसके हवाले से ये सारी बातें जो हैं इसको कवर करती हैं कि आप अपने मुआशरे के अंदर किन लोगों का साथ देते हैं। क्या उन तीन सहाबा ने सच बोलकर उनकी नफी नहीं की थी जिन्होंने झूठ बोलकर अपनी निजात का जरिया बना लिया था? तो सच्चाई जो है उनके साथ देना और उसी सच्चाई ने उनको जो है वो नजात दी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये बहुत बड़ी मिसाल है मोमिनीन के लिए कि हमेशा सच्ची बात कहो, सच का साथ दो, सच्चे लोगों के साथ रहो, सच्चे लोगों का साथ दो, और यही आपकी दुनवी और उखरवी जो जिंदगी है उसकी कामयाबी है। इसमें जमाती जिंदगी का भी जिक्र आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जमात के साथ जुड़े रहो। आमुरुकुम बिल जमा, मैं आपको जमात का हुक्म देता हूँ। मतलब ये अगर आप देखें वैसे भी जो हमारी जिंदगी गुजर रही है कि फराइज जो हैं, फर्जी बातें सारी की सारी हमें इज्तमाइयत की तरफ लेकर जाती है। कि एक शख्स जो है अकेला, जब फर्ज नमाज जो है वो एक शख्स जो है वो घर में अकेला नहीं पढ़ सकता और वो काबिले कबूल भी नहीं है। उसकी बहुत सारी वईदें जो हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर आती हैं कि एक आदमी जो है अगर शरी उजर के बगैर घर में नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज कबूल नहीं है, जब तक कि वो मस्जिद में तमाम लोगों के साथ मिलकर नमाज नहीं पढ़ता है। इसी तरह आप देखें कि हज है, कोई शख्स अकेला नहीं कर सकता, बल्कि बहुत बड़ा इजमा है, जुमे की नमाज है, उसके अंदर सारे लोग इकट्ठे जो है वो नमाज पढ़ते हैं। तो ये सारी इबादत है। अगर कोई शख्स ये कहे कि रमजान के जो जो रोजे हैं एक महीने के हैं, मैं रमजान की बजाय किसी और महीने में रखूंगा, तो उसके ये रोजे कबूल नहीं है, क्योंकि एक इज्तमाइयत है और उस इज्तमाइयत के अंदर ही ये सारी चीजें जो है वो एक्सेप्टेबल हैं। तो इसलिए ये जो दीन है ये इज्तमाइयत का दीन है, मुआशरती इज्तमाइयत का दीन है। इसके अंदर जितनी इबादत हैं और जितनी इस्लाह की चीजें हैं, आप देखें कि इन इन आयात के अंदर हमें वो सारी रहनुमाई मिलती है कि एक मदीना का जो माशरा था उसके अंदर किस तरह के मामला जो हैं वो पेश आते हैं और लोग किस तरह इज्तमाइयत का सबूत देते हैं। इसमें दो कीमती नसीहतें हैं। पहली नसीहत जो है वो तकवा अख्तियार करो। तकवा दिल की ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें अल्लाह के खौफ और उसकी मोहब्बत के सिवा किसी और का खौफ और मोहब्बत न हो, और इस खौफ की वजह से दिल का मेलान हमेशा नेकी की तरफ हो और बुराई से नफरत महसूस हो। ये वो कैफियत है जो दिल की पासबानी करती है, इसमें बुरे ख्यालात को दाखिल होने का मौका नहीं देती, हुब्बे दुनिया दिल में अपनी जगह नहीं बना सकती। दूसरी नसीहत इस हवाले से है कि सच्चों और रास्तबाजों की सोबत और मैयत इख्तियार करो। जिस तरह तकवा अंदर के बिगाड़ को दुरुस्त करता है, इसी तरह रास्तबाजी की सोबत बाहर से शैतान के हमलों की मुदाफत करती है। इंसान की फितरत अल्लाह ने इस तरह की बनाई है कि वो दूसरों पर असरअंदाज भी होता है और दूसरों का असर कबूल भी करता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकीज़ा सोबत पर बहुत जोर दिया है। इंसान का माहौल इंसान को मुतासर करता है। सच्चाई और रास्तबाजी की बरकतों के पेशे नजर आम मुसलमान को हदायत की जा रही है कि सच्चे और रास्तबाज लोगों के साथ हो जाओ, यानी मुखलिस और मुत्तकी मोमिनों के साथ रब्त और ज़ब्त रखो, उनकी रफाकत इख्तियार करो, उनकी सोबत में रहो और दीन की इज्तमाई जद्दोजहद में उन्हीं की ताईद और हमायत करो, और मुनाफिकाना रवैया अख्तियार करने वालों से बचकर रहो। ये आप देखेंगे ये पूरी हमारी जिंदगी को कवर करती है कि हमने मुआशरे में किस तरह रहना है। ये हो नहीं सकता कि आप मुआशरे से कट के रहें। हमेशा आपकी सोच, आपकी फिक्र, आपका आपकी मैयत, आपकी तईद दूसरों को किस हवाले से है, किन लोगों की आप तईद करते हैं, किन किन लोगों का आप साथ देते हैं, ये मैटर करता है आपकी उखरवी जिंदगी के ऊपर भी। गोया ये इज्तमाई जिंदगी इख्तियार करने का हुक्म है, नेक लोगों की सोबत इख्तियार करने और जमाती जिंदगी से मुंसलिक रहने के बाद से बहुत से फायद और बहुत सी बरकते हैं। जमाती जिंदगी दरअसल एक काफले की मानिंद है। काफले में दौराने सफर अगर किसी साथी की हिम्मत जवाब दे रही हो या कोई माजूरी आड़े आ रही हो तो दूसरे साथी उसे सहारा देने, हाथ पकड़ने और हिम्मत बढ़ाने के लिए मौजूद होते हैं। ये आप देखिए कि किस तरह एक दूसरे का मुआवन और मददगार। ये महा जो है ये साथ होना, ये मुआवनत के मानी में भी आता है कि आपने मुआवनत करनी है तो सिद्दीकीन के साथ करनी है और जो जो नेक हैं उनके साथ करनी है, जो सच्चे लोग हैं उनके साथ करनी है। ये दो अहादीस भी हैं कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन सिद्क नेकी की तरफ रहनुमाई करता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है और आदमी सच बोलता है यहाँ तक कि वो सिद्दीक का लकब और मर्तबा हासिल कर लेता है और झूठ नाफरमानी की तरफ रहनुमाई करता है और नाफरमानी जहन्नम की तरफ ले जाती है और आदमी यकीनन झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के हाँ बहुत झूठा लिख दिया जाता है। सैयदना हसन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से सुने हुए ये अल्फाज याद हैं, वो चीज छोड़ दे जो तुझे शक में डाले और उसको इख्तियार कर जिसकी बाबत तुझे शको शुबा ना हो, इसलिए कि सच इत्मीनान का बायस है और झूठ शक और बेचैनी है। अगली आयत में शायद टाइम ज्यादा लग रहा है, सही। अगली आयत में फरमाया, मा काना नहीं था मुनासिब ले अहलल मदीनते मदीना वालों के लिए, व मन हौलहुम और उसके गिर्दो नवाक के लोगों के हवाले से फरमाया गया और उनके लिए जो इर्द गिर्द हैं, मिनल आराब देहातियों में से, अन यतखल्लफू के वो पीछे रहें, हर रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल से, वला यरगबू और ये के ना चाहें, बे अनफुसिहिम अपनी जानों को, अला नफसी ही उनकी जान से। जालिका ये इसलिए है, बे अन्नहुम इस सबब से के वो, ला युसीबुहुम नहीं पहुंचती उनको, जमा उन कोई प्यास, ये जमीआ और यज़ उन और जमा अन, ये प्यास के हवाले से तीनों चीजें हैं और जमा अन प्यास और तशनगी के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। वला नसब उन ना कोई मुशक्कत, ये नसेबा यन सबो नसबन मेहनत करना मुशक्कत करना उसके हवाले से ये इस्तेमाल होता है, कुरान में इस्तेमाल किया गया है। वला मखमसतुन और ना कोई शदीद भूख, खमासा इसका मादा है, खमोसा यखमोसु हमसन ये भूखा रहने के वाले से है, मखमसतुन भूख के लिए इस्तेमाल होता है। फी सबीलिल्लाही अल्लाह की राह में, वला यतऊना और वो पैर से नहीं रोनते, वतिआ यतआ वतअन किसी चीज को कदमों तले दबाना और रोंदना, मौते अन रोंदी हुई जगह के हवाले से आता, मौते अन किसी ऐसी रोंदने की जगह को जो, यवीदुल कुफारा सख्त गुस्सा दिलाए कुफार को, वला यनालूना, और वो हासिल नहीं करते, मिन अदुविन नैलन, किसी दुश्मन से कोई मतलूबा चीज, इल्ला कुतिबा लहुम, मगर ये के लिखा गया उनके लिए, बिही अमलुन सालिह, इसके सबब से एक नेक अमल, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युदीउ, नहीं जाया करता, अजरल मुहसिनीन, मुहसिनीन का अजर। अहले मदीना और उसके इर्द गिर्द के आराब के लिए जेबा न था कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठ रहते, और ना ये कि अपनी जान को उसकी जान से अजीज रखते। ये इसलिए कि जो प्यास, थकान और भूख भी अल्लाह की राह में उनको लाहक हुई है, और जो कदम भी वो कुफार को रंज पहुंचाने वाला उठाते हैं, और जो चरका भी किसी दुश्मन को लगाते हैं, इन सब के बदले में उनके लिए एक नेकी लिखी जाती है, बेशक अल्लाह नेकियों का अजर जाया नहीं करता। इस आयत में ये बात हमारे सामने रखी गई है कि जो पीछे रह गए हैं वो और जो चले गए थे, वो दोनों का मामला बराबर का नहीं है, बल्कि इस राह के अंदर जिसने भूख बर्दाश्त की है उसके लिए भी नेकी है, और जिसने थोड़ी सी तकलीफ भी इस रास्ते में बर्दाश्त की है, अल्लाह ताला ने उसकी नेकी को जाया नहीं किया, और कल क्यामत के दिन ये सारा मामला जो है वो सामने आ जाएगा। और तफसीर इब्ने कसीर में जब पढ़ रहा था तो उसमें यहाँ तक लिखा हुआ था कि इतना मुश्किल ये मामला था जो भूख का जिक्र किया गया है, कि एक खजूर होती थी और उसको दो दो सहाबा जो है वो शेयर करके गुजारा किया करते थे। तो यहाँ तक तो मुश्किल के हालात थे जिन हालात से ये सारे लोग गुजरे। तो यहाँ बताने का मतलब ये है कि ऐसा ना समझो कि जो लोग गए थे उन्होंने तकलीफें काटी हैं तो उनकी ये जो कुर्बानियां हैं वो जाया जाएंगी, नहीं, बल्कि उनकी कुर्बानियों को अल्लाह ताला ने रिकॉर्ड रखा है और अल्लाह ताला उनको उनके अजर को जाया नहीं करेगा। ये इंग्लिश में उसका तर्जुमा है, इस हवाले से इस आयत में उन लोगों का तज़किरा और खिताब भी जो साहिब ईमान थे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की सोबत में कमी के बायस ईमान की को बरगोबार लाने और कमजोरियों पर काबू पाने की सलाहियत अभी पैदा नहीं हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते थे लेकिन मोहब्बत के तकाज़ों से बेखबर थे। उनको तवज्जो दिलाई जा रही है कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी और अल्लाह की रजा की तलब और उन तमाम मुसीबतों तलखियों के बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकलने पर तो मजबूर कर दे और तुम आराम से घर में बैठे आराम और राहत के मजे लूटते रहो, और फिर भी ये दावा हो कि हमें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है और हम अल्लाह की रजा के चाहने वाले हैं। इस तरह से उनके नाजुक जज्बात को छेड़कर उनको गैरत दिलाई जा रही है ताकि वो अपनी हालत पर गौर करें और अपनी कमजोरियों पर काबू पाने की कोशिश करें। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जबानी मोहब्बत के दावे करने से वो बात नहीं बनती, बल्कि असल मोहब्बत तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज का हुक्म दें बस उसको कर गुजरने के लिए तैयार हो जाओ। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बनी, जिसने मुझसे मेरी सुन्नत को अपनाया असल में हकीकत में उसने मुझसे मोहब्बत की है। तो जाहिर है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत जबानी कलामी जो है वो तो काबिल कबूल नहीं है जब तक कि उसके ऊपर जो है वो अमल पैरा ना किया जाए। वला युन्फिकूना, और वो नहीं खर्च करते, नफाकतन सगीरतन, कोई छोटा खर्चा, नफाका खर्चा के हवाले से है कोई चीज खर्च करना स्पेंडिंग के हवाले से, वला कबीरतन, और ना ही कोई बड़ा खर्चा, वला यक्ताउना वादियन, और वो नहीं काटते यानी तय करते कोई वादी, इल्ला कुतिबाला हम, मगर ये के लिखा गया उनके लिए, लियजियहुमुल्लाहु, ताकि जजा दे उनको अल्लाह, अहसना बेहतरीन, मा कानू या अमलून, इसलिए जो वो अमल करते थे। और जो कोई छोटा या बड़ा खर्च अल्लाह की राह में करते हैं और जो वादी भी वो तय करते हैं, सब उनके लिए लिखा जाता है ताकि अल्लाह उनको उनके अमाल का बेहतरीन सिला अता फरमाए। इन्फाक के हवाले से ये बड़ी बड़ा अहम मौका था, और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया था तो हर एक सहाबी जो है वो बढ़ चढ़ कर उसके अंदर हिस्सा लेते थे। उसमें जो मालदार सहाबी थे उनका तो मामला जो है वो अलग है कि उन्होंने भी अपना जो कुछ है वो सब कुर्बान किया था, लेकिन गरीब जो थे बहुत माली लिहाज से जो थे उनका मामला जो है वो भी उनके जज्बे को देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदर की। वो वाकया आप हज़रात के सामने होगा कि एक सहाबी है, उनके पास जब कुछ नहीं था तो उन्होंने कुआं चलाया एक यहूदी का, और उससे उसको चंद मुट्ठी भर खजूरें मिली, और वो लाकर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करता है तो अल्लाह के रसूल उस सारे इंफाक के माल के ऊपर जो है उसको बखेर देते हैं और कहते हैं कि आज ये सारे माल के ऊपर हावी है। इसलिए कि उसने पूरी रात मेहनत की, जब कुछ नहीं था तो जज्बा था कि मैं भी इसके अंदर जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लूं। तो ये वो जज्बा था सहाबा का, उसकी कदर अल्लाह ताला यहाँ इस आयत के अंदर बयान फरमा रहे हैं कि उनका जो अजर है वो उनको अल्लाह ताला बेहतरीन सिला जो है वो अता फरमाएंगे। ये उससे अगली आयत है जिसके अंदर तमाम मुसलमानों को एक बहुत ही अहम फरीजे की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई गई है। वमा काना, और नहीं है अल मुमिनूना मोमिन लियनफिरु, के वो निकले काफतन सब के सब, फलौला नफरा, तो क्यों नहीं निकला मिन कुल फिरकतिन, हर एक फिरका से, मिन हम उनमें से, ताइफा एक ग्रोह, लियतफक्कहू, ताकि वो सूझबूझ हासिल करें, फिर दीन दीन में, वाले युन्दिरु, और ताकि वो खबरदार करें, कौमहुम अपनी कौम को, इदा रजाउ इलैहिम, जब वो लौटें उनकी तरफ, लअल्लहुम, शायद वो लोग, यहज़रून, बचते रहें। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया, जैसा कि ये तबूक का मामला था, तबूक में लोगों के अंदर ये कमजोरी पाई जाती रही है, और लोगों ने कम इलम की वजह से भी और दीन की सही फहम ना होने की वजह से लोगों के अंदर इस तरह की सुस्तियां और ये सारी चीजें जो है वो पैदा होती रही हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे मुमकिन नहीं था कि सारे के सारे लोग मदीना के भी और गिर्दो नवा के सारे लोग मस्जिद नबी में जमा हो जाएं और जमा होकर जो है वो दीन का इल्म हासिल करें, ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं था। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में एक तरीका बताया है कि इन लोगों के लिए ऐसे तो सब के सब लोगों का आना ठीक नहीं है, मुख्तलिफ इलाकों से चंद लोग जो हैं वो आए और आकर दीन का फहम हासिल करें, दीन की मसाइल को और मामलात को और इसकी रूह को समझने के लिए जो है वो मक्का और मदीना में आए और आकर वहां से सीखें, और सीख के फिर वापस जाएं अपने अपने उन कबीलों और अपने उन इलाकों की तरफ और जाकर इस तालीम को जो है वो आम करें। यहाँ जो मेन जो चीज बताई गई है, लियता फक्काहू फिद दीन, जो तालीम है अगर उसके अंदर तफक्का फिद दीन नहीं है तो वो इलम फायदे वाला इलम नहीं है। असल निजात का जरिया इलम जो है वो तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इलम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर लाजमी है। अब वो दीन जो इंसान को अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल से दूर कर दे, वो इलम हासिल करने का यहाँ पे उसको डिस्करेज किया गया है। वो दीन इसीलिए क्लियरली ये बात सामने रखी गई है, ले जाता फक्का हु फिर दीन, मतलब वो आए और जब वो दीन जो है वो दीन इस्लाम की मुआवनत के अंदर कोई भी इलम हो, वो दीन का इलम है अगर वो इस दीन के अंदर मुआवनत करने वाला है और वो इस्लाम को तकवीयत देने वाला है और इस्लाम के निजाम को तकवीयत देने वाला है, वो हर इलम तफक्को फी दीन के अंदर आता है। तर्जुमा है, जरूरी न था कि साहिब ईमान सारे के सारे निकल खड़े होते, बस क्यों ना निकले हर ग्रोह में से कुछ लोग ताकि वो दीन में समझ पैदा करते और अपनी कौम के लोगों को खबरदार करते जब उनकी तरफ लौट कर जाते ताकि वो भी बचते रहे। तो ये उसी हवाले से है, मौलाना ने भी लिखा है कि जब इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह वराइतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, तो ये जो आखिरी दौर था इसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो मुसलमान होते चले गए, लेकिन हकीकत में क्या है कि वो मुसलमान तो हो गए लेकिन उनकी वो तरबियत नहीं थी जो सीनियर सहाबा की तरबियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते हुए हुई थी। अब उसका एक ही तरीका था कि उनको किस तरह एजुकेट किया जाए, उनको किस तरह दीन की सारी मालूमात पहुंचाई जाए, तो उसका एक तरीकाकार बताया गया है कि किस तरह लोगों को आना चाहिए, दीन हासिल करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि उलमा जो है वो कहाँ रशिया की स्टेट्स और पता नहीं कहाँ कहाँ तक जो है वो जाते हैं इस दीन को आम करने के लिए। इल्मे दीन से आगाही, अहकाम से वाकफियत और हकूक व फराइज का फहम मुसलमान पर फर्ज है। हर मुसलमान पर जो इबादत फर्ज की गई हैं, जो फराइज आयद दिए गए हैं, जो अवामर व नवाही दिए गए हैं और जिंदगी गुजारने के अहकाम दिए गए हैं और आदाब सिखाए गए हैं, उनमें से एक एक चीज का जानना इनफरादी जिंदगी में भी हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हमारी मजबूरियों को देखते हुए इस आयत में हुक्म दिया है कि मुसलमानों के लिए ये जरूरी नहीं कि वो गज़वाए तबूक में शिरकत की तरह सब निकल खड़े हों, उनके लिए ये बात काफी है कि हर बड़े ग्रोह में से चंद अफराद ऐसे जरूर निकलें जो अल्लाह के दीन में समझ पैदा करने के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंचे या किसी ऐसे शहर में जाएं जहां इल्मे दीन के असूल की आसानियां मुयसर हों और फिर लौट कर अपने लोगों में जाएं और उन तक दीन की वो फिक्र और फहम पहुंचाएं जिनको उन्होंने खुद हासिल किया है। इल्मे दीन बुनियादी अहमियत रखने वाली चीज है। लोग अगर शरी हदूद से वाकिफ न हों तो वो सही इस्लामी जिंदगी बसर नहीं कर सकते और अगर दीन का शऊर न हो तो उनमें गुनाह की जहनीयत यहां तक के कुफर और नफाक भी परवरिश पा सकता है। इसलिए मुसलमानों में इल्मे दीन को आम करने की जरूरत है। इल्मे दीन को आम करने के लिए हालात की मुनासिबत से मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। एक सूरत यहाँ तजवीज की गई है, यानी तालीमो तरबियत और इरशाद तदरीस के मरकज हों और वहाँ मुतल्लिका इलाकों के हर गोशा से लोगों की एक तादाद पहुँच कर इस्तफादा करे और फिर अपने अपने मुकाम पर पहुँच कर आम लोगों को दीन की तालीमात से वाकफ कराने की कोशिश करे। इल्मे दीन की इशाअत के दूसरे तरीकों में मसाजिद में कुरान और हदीस के दुरूस का सिलसिला यानी दीनी इजमाआत मदारस वगैरह शामिल है। दीनी तालीम और तरबियत की जरूरत बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी, इसलिए बड़ों को नजरअंदाज करके सिर्फ बच्चों की तालीम पर इक्तफा करना सही नहीं। दीन की तालीम में असल अहमियत तफक्को को है, यानी इस बात को कि दीन की समझ पैदा हो जाए, ये मकसद रस्मी किस्म की तालीम देने या माज फिकी मालूमात बहम पहुंचाने से हासिल नहीं हो सकता, बल्कि उनके लिए ऐसी तालीम की जरूरत है कि आदमी अपने रब को पहचान ले, अपने मकसद जिंदगी से आशना हो जाए और हर बात उसके जहन नशीन हो जाए कि और ये बात उसके जहन नशीन हो जाए कि दीन उसे मुखलिसाना पैरवी का मुतालबा करता है और इस्लाम ये कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले कर दिया जाए। मतलब यह है कि सिर्फ सिर्फ मालूमात हासिल करना मकसद ना हो बल्कि उसको हजम करना जो है ये मेन मकसद होना चाहिए कि बंदे के अंदर जो है वो सारी तालीमात बंदे के अमली किरदार को दुरुस्त भी करें। तालीम तरबियत का असल मकसूद लोगों को गैर इस्लामी जिंदगी के नतायज बद से आगाह करना है ताकि उनमें आखिरत की जवाबदेही का एहसास पैदा हो और सही इस्लामी जिंदगी गुजारने के लिए वो आमादा हो जाए। दीन का ठोस इलम और इसकी समझ उसी सूरत में पैदा हो सकती है जबकि कुरान को समझने और समझाने की कोशिश की जाए। तो ये आज की आयात थी, अल्लाह ताला हमें इनको समझने की और इनके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और इसके अंदर जो मेन पॉइंट हमारी इस्लाह के हवाले से अल्लाह ताला ने रखे हैं उन पे अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों में तकवा पैदा करे और उसी के साए में हमारे तमाम आमाल हों। अल्लाह ताला हमें रियाज से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें इस कुरान करीम की बरकात को समेटने की तौफीक अता फरमाए और हमारी जो लग्जशें हैं अल्लाह ताला उनको उनसे दरगुजर फरमाए और देखें कि एक नमूना जो सहाबा के हवाले से हमारे सामने रखा गया है अल्लाह ताला हमें भी हर लम्हा अल्लाह ताला से रजू करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।